नमस्कार, द प्रिंट सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आज पढ़ रहा हूं पूजा मेहरोत्रा की रिपोर्ट, जिसमें वो बता रही हैं नेटफ्लिक्स के खाके स्टार आईपीएस अफसर अमित लोढ़ा के बारे में। वो बता रही हैं कि कैसे आईपीएस लोढ़ा ने बिहार में सिंघम बनकर गैंगस्टर का सफाया किया। आज से करीब 25 साल पहले एक ऐसा दौर था जब बिहार मर्डर, डकैती और अपहरण जैसी वारदातों के लिए देश भर में कुख्यात था। हर दिन वहां अपराध से जुड़ी कोई न कोई खबर सुर्खियों में रहती। बिहार से बाहर पढ़ाई के लिए न केवल बच्चे बहुत तेजी से पलायन कर रहे थे, बल्कि पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बनने वालों से लेकर संभ्रांत लोग तक बिहार जाने से कतराते थे कि पता नहीं कब उनका या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य का अपहरण हो जाए। जरा सी बात पर पता नहीं कौन गोली मार दे। ऐसे में किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो दुबला पतला सा 5 फुट 8 इंच लंबा आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा अपराधियों को धूल चटा देगा। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा बताते हैं कि हालांकि बिहार के अपने कुछ दोस्तों से वहां के बारे में किस्से सुन रखे थे, लेकिन यह पता नहीं था कि हालात इतने खराब होंगे। लोढ़ा के ही शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा कि यह जगह मेरी जन्मभूमि राजस्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर थी, लेकिन किसी भी अन्य युवा अधिकारी की तरह मैं जोश से लबरेज था और वहां जाते समय बस यही सोच रहा था कि मैं कर्मभूमि में क्या क्या कर सकता हूँ। 25 साल की उम्र में बिहार पहुंचे लोढ़ा की पोस्टिंग बिहार के हर उस जिले में की गई जहां अपराध चरम पर था या जो अपराधियों के गढ़ माने जाते थे, चाहे वो नालंदा हो या बेगूसराय या फिर बात करें शेखपुरा, मुजफ्फरपुर और गया की। 2006 में शेखपुरा के गब्बर सिंह कहे जाने वाले अशोक महतो और उसके साथी पिंटू महतो को जेल पहुंचा कर तो उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत बड़े बड़े पुलिस वाले नहीं कर पाए थे। बिहार के लिए वो कठिन दौर था। पुलिस लाचार थी, अपराधी बेहद शातिर थे, लेकिन उस दौरान लोढ़ा के बॉस रहे बिहार पुलिस के पूर्व डीजी एसके भारद्वाज कहते हैं कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो मैचलेस है। वो ईमानदार अधिकारी होने के साथ साथ पब्लिक ऑफिसर है। अमित ने अपने 25 साल के करियर को दो किताबों की शक्ल में सामने रखा है। इसमें से एक किताब बिहार डायरीज पर बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक नीरज पांडे की नज़र पड़ी तो उन्होंने इस पर वेब सीरीज बनाने का फैसला किया और जो आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। खाकी द बिहार चैप्टर में आईपीएस लोढ़ा की भूमिका करण टैकर निभा रहे हैं। बिहार की सच्ची घटनाओं पर केंद्रित कहानियों को स्क्रीन प्ले की शक्ल देने वाले उमाशंकर सिंह भी सहरसा के ही हैं। उमाशंकर ने द प्रिंट को बताया कि किताब बिल्कुल डायरी की शक्ल में लिखी गई है, लेकिन इसके इंसिडेंट इतने ज़बरदस्त थे कि इस पर कहानी बुनने और सजाने में बहुत मज़ा आया। उमा बताते हैं कि एक समय बिहार में चोरी, डकैती और अपहरण जैसे घटनाएं अक्सर नेशनल मीडिया में छाई रहती थीं। उस दौर की घटनाओं के बारे में थोड़ा रिसर्च किया और कहानी लिखने में काफ़ी क्रिएटिव लिबर्टी भी ली है। फिर भी रियल इंसिडेंट को काफ़ी करीब से दिखाने वाली इस वेब सीरीज़ के बारे में उन्हें उम्मीद है कि यह दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी। बिहार डायरीज़ के पर्दे पर आने की तैयारी के साथ ही अमित लोढ़ा की जांबाजी के किस्से एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कैसे उन्होंने बिना समय गंवाए दुर्दांत से दुर्दांत अपराधियों से मोर्चा लिया। अशोक महतो और उसके साथी पिंटू महतो की गिरफ्तारी उनके करियर की बड़ी सफलताओं में शुमार है। 2000 से 2006 के बीच शेखपुरा के गब्बर सिंह कहे जाने वाले अशोक महतो गैंग ने पूरे इलाके में कोहराम मचा रखा था। लोढ़ा बताते हैं कि भूमिहार और कोयरी जातियों के बीच जंग जैसी स्थिति बनी हुई थी। 2005 में यहां गैंगवार में 2 रातों में 15 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। क्षेत्र में आतंक के पर्याय बन चुके अशोक महतो और पिंटो पर 40 से अधिक लोगों की हत्या का आरोप था, जिसमें एक पूर्व सांसद राजो सिंह, एक खंड विकास अधिकारी और 3 पुलिस वाले भी शामिल थे। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद संभालने के कुछ ही समय में अमित लोढ़ा को शेखपुरा भेजा गया। वो बताते हैं कि अशोक महतो गैंग पर काबू पाने की जिम्मेदारी के साथ मुझे मई 2006 में नालंदा से शेखपुरा भेजा गया था और 13 अगस्त को यानी 3 महीने के अंदर ही ये खूंखार अपराधी मेरी गिरफ्त में था। उन्होंने अशोक महतो के साथ पिंटू महतो को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, जो 2002 में नालंदा जेल ब्रेक कांड के कारण भी सुर्खियों में रहा था। लोढ़ा अपनी सफलता का श्रेय महकमे के अधिकारियों के साथ साथ अपने जूनियर साथियों से हर कदम पर मिले सहयोग को भी देते हैं। साथ ही बताते हैं कि कैसे अपराधियों की तरह ही सोचने के तरीके ने उनकी मदद की। खासकर अशोक महतो का जिक्र करते हुए लोढ़ा कहते हैं कि ये केस हाथ में लेने के बाद मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि आखिर अशोक महतो क्या सोचता होगा, उसका अगला कदम क्या हो सकता है। लोढ़ा के मुताबिक पिंटू महतो जेल से रिहा हो चुका है, लेकिन अशोक महतो अभी भी भागलपुर की एक जेल में बंद है। अपनी ज़िंदगी का से जुड़ा एक रोचक किस्सा सुनाते हुए अमित लोढ़ा बताते हैं कि जब वो छोटे ही थे तो किसी ज्योतिषी ने उनकी माँ को बताया था कि उनका बेटा अपराध की दुनिया में बड़ा नाम करेगा। इसके बाद तो उनकी माँ को यही डर सताने लगा था कि कहीं उनका बेटा अपराधी ही न बन जाए। बहरहाल ये भविष्य काफ़ी हद तक सही साबित हुआ और उन्होंने बतौर IPS अफसर बड़े बड़े अपराधियों की नकेल कसकर तो नाम कमाया ही। अब उनकी ज़िंदगी पर आधारित वेब सीरीज भी जल्द ही लोगों के सामने होगी। लेकिन सैकड़ों खूंखार अपराधियों से जुड़े मामले सुलझा लेने वाले अमित लोढ़ा की ज़िंदगी किताब पढ़कर जितनी फिल्मी लगती है उससे कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रही है। वो बताते हैं कि अपराधियों को पकड़ने की मुहिम के दौरान दो बार न सिर्फ उनकी जान पर बनाई बल्कि परिवार को लेकर धमकियां भी झेलनी पड़ी। लेकिन अपराधों पर काबू पाने के अपने जुनून के आगे उन्होंने इस सब की कभी परवाह नहीं की। 84 बैच के IPS ऑफिसर भरद्वाज लोढ़ा के बारे में कहते हैं कि वो एक कंप्लीट ऑफिसर हैं। द प्रिंट से करीब 15 मिनट की बातचीत में भरद्वाज ने तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें लोढ़ा पर गर्व है। वो बताते हैं कि जब अमित SP नालंदा बने तो मैं IG ऑपरेशंस था, फिर बेगूसराय और फिर गया। हर जगह मैं उसका बॉस रहा। कई बार उसके तुरंत निर्णय लेने की वजह से नाराज भी हुआ, लेकिन उसकी ऑनेस्टी के आप कायल होते जाते हैं। 1997 बैच के अधिकारी लोढ़ा करीब 16 सालों तक बतौर IPS बिहार के विभिन्न जिलों में तैनात रहने के बाद डेपुटेशन पर BSF में पहुंचे। उन्होंने वहां पर 2013 से 2020 के बीच अपनी सेवाएं दी। BSF में DIG के पद पर रहा ये जांबाज अधिकारी फिलहाल स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में IG के पद पर तैनात है। अमित लोढ़ा ने अपनी जिंदगी और करियर में तमाम उतार चढ़ाव देखे और विवादों के घेरे में भी आए। अपनी किताब पर फिल्म बनने को लेकर कॉपीराइट मामले और भ्रष्टाचार को लेकर अपने ही महकमे के साथियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर इन दिनों उनके खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा की जांच चल रही है। दरअसल पिछले दिनों शराब माफिया से जुड़े एक मामले में उनकी तरफ से की गई जाँच में एक अन्य IPS आदित्य कुमार को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया गया था। इसे लेकर ऐसी खबरें भी सुर्खियों में आईं कि जब आदित्य कुमार गया में SP थे तब लोढ़ा वहां IG थे। इस दौरान दोनों अफसरों में बनती नहीं थी। ये जांच इसी तनातनी का नतीजा बताया गया। हालांकि इस मामले में आदित्य कुमार फिलहाल फरार चल रहे हैं। लोढ़ा की हमेशा यही कोशिश रही है कि वो एक ऐसे अफसर बने जिस तक पहुंचना सबके लिए आसान हो। 2000 तक जिले का SP होते हुए भी लोढ़ा के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, लेकिन वो लैंडलाइन पर आने वाला हर फ़ोन खुद ही उठाते थे, भले ही रात के 3 ही क्यों न बजे हों। अमित को करीब से जानने वाले बताते हैं कि उनकी आदत रही है कि क्राइम स्पॉट पर भी खुद ही सबसे पहले पहुंचते थे। इसका फ़ायदा उन्हें केस को समझने से लेकर सुलझाने तक में होता रहा है। अपनी कार्यशैली से जुड़े एक वाक्य का जिक्र करते हुए अमित बताते हैं कि उनकी नालंदा पोस्टिंग के दौरान 2000 में जिले में अपहरण की घटनाएँ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। उसी दौरान एक बार एक रिक्शे वाले का अपहरण हुआ और एक विदेश से आए बिहारी डॉक्टर का भी। पुलिस महकमा दबाव में था। अमित बताते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि रिक्शे वाले का कोई क्यों अपहरण करेगा, इसकी जांच कैसे करें। तभी मुझे एक मुखबिर का फ़ोन आया कि एक जगह कुछ लोग रुके हैं, उनकी गतिविधियाँ सही नहीं लग रही हैं। रात के 3 बजे फ़ोन पर यह सूचना मिलते ही अमित आनन फानन में अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच गए और कुछ देर मुठभेड़ के बाद बदमाशों पर काबू पाने में सफल रहे। जब वो अंदर रिक्शे वाले को ढूंढने के लिए घुसे तो अंधेरी कोठरी में सूट बूट टाई वाला एक आदमी मिला, जो पुलिस वाले को देखते ही उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। वो डॉक्टर साहब थे। हालांकि उसी दिन रिक्शे वाले का भी पता चल गया, लेकिन डॉक्टर साहब को छुड़ाने की खबर अखबारों की सुर्खियां बनी। ये जोशीला नौजवान खूंखार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए कदम कदम पर जोखिम लेने से कतई नहीं घबराता था और जिस केस में हाथ डालता केस सॉल्व किए बिना दम न लेता। 2008 में उन्हें ऐसी ही एक बड़ी सफलता तब मिली जब रामपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में 9 नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। उन्हें इसके लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमेशा सतर्क और चौकन्ने रहने वाले IPS अमित लोढ़ा कई अधीनस्थ अधिकारियों और सबॉर्डिनेट्स के लिए रोल मॉडल हैं। जैसलमेर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में पोस्टेड सिक्योरिटी गार्ड हों या फिर अधिकारी, वो लोढ़ा को फिर वापस अपने बॉस के तौर पर देखना चाहते हैं। उनके साथ काम कर चुके एक अधिकारी राघवेंद्र कुमार मिश्रा, जो फिलहाल दिल्ली पुलिस में हाउसिंग कॉरपोरेशन में पोस्टेड हैं, वो बताते हैं कि अमित लोढ़ा एक कूल कमांडर हैं। वो फुल ऑफ पॉजिटिविटी हैं, जो अपने अधीनस्थों से कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मिश्रा बताते हैं कि अपने 22 वर्षों के करियर में जितना कुछ उन्होंने 2016 से सितंबर 2020 तक अमित लोढ़ा के साथ काम करके सीखा, उतना शायद और कभी नहीं सीखा। उनके साथ रहकर ही पता चला कि कमांडर को कभी पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका उसका काम अपने नीचे वालों में विश्वास भरना और उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों का ध्यान रखना होता है। बीएसएफ में उनके साथी रहे राघवेंद्र बताते हैं कि जब डीआईजी अमित बीएसएफ में अपनी सेवाएं देने के बाद पटना लौट रहे थे तो हर अधिकारी और जवान की आँखें नम थीं। वो उन्हें बहुत मिस करने वाले थे। आखिरकार उनसे पहले किसी अधिकारी ने जैसलमेर बॉर्डर, जहाँ पारा अमूमन 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, वहां पर तैनात जवानों के बारे में इतना नहीं सोचा था। वो अमित ही थे जिन्होंने बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए बेहतरीन गॉगल्स के बारे में सोचा था। जैसलमेर में अमित लोढ़ा की पोस्टिंग के दौरान बीएसएफ के डीजी रहे के शर्मा बताते हैं कि अमित ने बीएसएफ में मेरे साथ काम किया है। वो एक आउटस्टैंडिंग और बैलेंस्ड ऑफिसर हैं। उनकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हमारे लिए किसी एसेट से कम नहीं थी। शर्मा ने बताया कि उन्होंने सीमा सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी की मदद से नए तरीके खोजने की पहल की, साथ ही बल के लिए फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम जैसी कल्याणकारी स्कीम पर भी अमल किया। शर्मा के मुताबिक वह IIT से पढ़े हुए हैं तो अपने स्किल का इस्तेमाल उन्होंने गृह मंत्रालय के लिए भारत के वीर जैसी ऐप बनाने के लिए भी किया, ताकि लोग शहीदों के परिवारों को सीधे डोनेट कर सकें। वो लोगों के बीच जागरूकता के लिए लगातार यात्राएं भी करते रहे हैं। खुद अमित को भी अपनी भारत के वीर पहल पर गर्व है। उन्होंने फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के साथ मिलकर इसके लिए 350 करोड़ रुपए जुटाए थे। हालांकि अमित हमेशा से न तो कूल थे और न पॉजिटिव। उनकी लाइफ में एक ऐसा दौर भी था जब उनके मन में सुसाइड करने की भी भावना आई थी। सेंट जेवियर स्कूल जयपुर में पढ़ाई के दौरान अमित इंट्रोवर्ट, शर्मीले, चुप और अकेले रहने वाले हुआ करते थे। हालांकि बचपन से ही स्क्वैश खेलना हमेशा उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता था। पढ़ाई में बढ़िया थे, उनकी मैथ्स और फिजिक्स अच्छी थी, जिस वजह से IIT पास कर गए। देश के नंबर एक माने जाने वाले IIT दिल्ली में एडमिशन मिला, लेकिन इंजीनियरिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, उसमें रुचि भी नहीं थी। चूंकि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो नंबर भी नहीं आ रहे थे। स्कूल में हमेशा टॉप करने वाला छात्र अब कॉम्प्लेक्स में जी रहा था। अमित उन दिनों को याद करते हुए थोड़ा शर्मा जाते हैं। वो कहते हैं कि उस दौरान मुझे सभी अच्छे लगते थे सिवाय खुद के। मैं डिप्रेशन में था, दब्बू होता जा रहा था। मुझे लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा बदसूरत हूँ और मेरी पर्सनालिटी भी अच्छी नहीं है। ये वो समय था जब उनके दोस्त तो बन जाते थे, लेकिन कोई उन्हें अपनी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था। अमित बताते हैं कि कोई मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाना चाहता था। अच्छे स्क्वैश खिलाड़ी रहे अमित के मुताबिक IIT में होने वाले हर टूर्नामेंट में फेलियर का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से वो कई बार तो मन में सुसाइड करने तक के बारे में सोच रहे थे। IIT जैसे तैसे पास करने के बाद जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने कमरे से निकलना बंद कर दिया। न सोकर उठने का समय, न सोने का समय। परिवार वाले भी समझा कर हार गए। अमित बताते हैं कि लेकिन समय बदला और कुछ दोस्तों ने जोश दिलाया। माँ भी रोज़ रोज़ कुछ न कुछ करने को प्रेरित करती रहती थी। वो बताते हैं कि आखिरकार उन्होंने UPSC की तैयारी की और सेलेक्ट भी हो गए। अमित का कहना है कि बतौर IPS मसूरी में ट्रेनिंग ने मेरे अंदर जो एक नया जज्बा भर दिया, फिर मैंने कभी पलट कर पीछे नहीं देखा। इसके बाद वर्दी से उन्हें इस कदर प्यार हुआ कि बिहार में वो अपराधियों पर कहर बनकर टूट पड़े। सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे सुप्रभात के एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।